ऐसे झंझावातों के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा की अधिकांश मात्रा आरोहण करती हुई आर्द्र वायु में संघनन, कंडेंसेशन और संगलन फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। इनका विकास कपासी वर्षी क्यूमुलोनिम्बस मेघों से होता है। इनमें जब तरल और ठोस जल उठती हुई वायु की तरंगों द्वारा इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया जाता है जहां तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी काफ़ी नीचे होता है, तब विद्युत एवं मेघ गर्जन की उत्पत्ति होती है। वायुमंडल की निचली परतों में उष्णाद्र वायु की उपस्थिति तड़ित झंझा के विकास की एक आवश्यक शर्त है। इसके लिए आरोही वायु तरंगों का प्रबल होना आवश्यक है। वायुमंडल की मोटी परत में प्रपाती ताप ह्रास द्वारा ही वायु तरंगों को उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तड़ित झंझा के विकास के लिए उष्णाद्र वायु राशि तथा अस्थायी वायुमंडल दो आवश्यक शर्तें हैं। ऐसी स्थिति में वायु का ताप ह्रास दर 0.55 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस प्रति हजार मीटर होनी चाहिए। तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए वायुमंडल में प्रतिबंधी अथवा संवहनी अस्थायित्व का होना अनिवार्य है। संरचना स्ट्रक्चर। एक सामान्य तड़ित झंझा में 3 से 5 संवाहनिक कोष पाए जाते हैं। इनमें प्रत्येक कोष का एक जीवन चक्र होता है जिसमें प्रबल वायु तरंगों की दिशा एवं विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक संवाहनिक कोष की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभिक अवस्था, परिपक्वावस्था, विघटन की अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में इन कोषों का निर्माण प्रबल ऊर्ध्वगामी संवहन धाराओं से होता है। परिपक्व अवस्था में इस प्रचंड तूफानों के प्रत्येक कोष में ऊर्ध्ववर्ती एवं अधोवर्ती वायु तरंगें पाई जाती हैं। विघटन अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि प्रत्येक कोष में अवरोही तरंगों डाउनफ्रॉट की प्रधानता रहती है। तड़ित झंझा की ऊंचाई 4 से 20 किलोमीटर तक होती है। तड़ित झंझा की ऊंचाई अक्षांश तथा मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इन झंझा मेघों की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। इन तूफानों का व्यास 3 से 4 किलोमीटर होता है। पूर्ण विकसित झंझा मेघों का शीर्ष भाग निहाई जैसा होता है। इनका आगे बढ़ा हुआ भाग तूफान के आगे बढ़ने की दिशा का सूचक होता है। इनके आधार तल नीचे से काले दिखाई पड़ते हैं। पूर्ण विकसित तड़ित झंझा से मूसलाधार वर्षा होती है जिनमें जल की बूंदे आकार में बड़ी होती हैं। कभी कभी इनसे उपुल वृष्टि भी होती है। भारी वर्षा के साथ ही मेघों में बिजली चमकती रहती है तथा मेघ गर्जन होता रहता है। धरातल पर हवा के तीव्र झोंके बड़े विनाशकारी होते हैं। इन तूफानों की उत्पत्ति उन क्षेत्रों में विशेष रूप से होती है जहां वायु राशियों का अभिसरण होता है अथवा जहां वाताग्र पाए जाते हैं। तड़ित झंझा की उत्पत्ति की अनुकूल दशाएं। फैक्टर्स फेवरिंग थंडर स्टॉर्म डेवलपमेंट। तड़ित झंझा की उत्पत्ति हेतु निम्नांकित परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। पहला, वायुमंडल में प्रतिबंधी अथवा संवहनी अस्थायित्व होना चाहिए। वायुमंडल में अस्थायित्व की मात्रा पर ही इन तूफानों की तीव्रता निर्भर करती है। दूसरा, संघनन तल तथा हिमतल के मध्य मेघों की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर होनी चाहिए। आरोही तरंगों के हिमतल तक पहुँचे बिना मध्य अक्षांशों में तड़ित झंझा का विकास असंभव है। संगलन की गुप्त ऊष्मा एवं हिमकण दोनों ही भारी वर्षा तथा विद्युत के लिए आवश्यक हैं। तीसरा, वायुमंडल में ऐसा कोई कारक अवश्य होना चाहिए जिससे उसके किसी भी तल में अस्थायित्व उत्पन्न हो सके। तड़ित झंझा के विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। तड़ित झंझा जैसे प्रचंड तूफान का अस्तित्व अल्पकालिक होता है। इस तूफान में कुल 3 से 5 संवाहनिक कोष होते हैं। इन कोषों में से प्रत्येक का जीवन चक्र वायु तरंगों की दिशा एवं परिमाण में होने वाले परिवर्तन के साथ समाप्त होता है। उपयुक्त कोषों के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, प्रारंभिक अवस्था। दूसरा, प्रौढ़ावस्था। तीसरा, विघटन अवस्था। इन 3 अवस्थाओं को, जिसमें पहला प्रारंभिक अवस्था, इसे कपासी मेघ की अवस्था, क्यूमुलो स्टेज भी कहते हैं, मेघों के आधार तल से उनके शीर्ष भाग तक विस्तृत प्रबल आरोही वायु तरंगे प्रत्येक कोष में पाई जाती हैं। इस अवस्था में मेघों में प्रचुर मात्रा में जल एकत्रित हो जाता है। ऊर्ध्वगामी वायु तरंगों के उत्पन्न होने के 15 से 20 मिनट के बाद ही वर्षा की बूंदों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इन बूंदों का कोष के विकास तथा आवेश केंद्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोष के निचले भाग का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण उससे जल वृष्टि होती है। स्मरणीय है कि वृष्टि के प्रारंभ होने के साथ ही कोष की प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ हो जाता है। प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज। इस अवस्था में प्रत्येक कोष में आरोही एवं अवरोही वायु तरंगों की एक साथ उत्पत्ति होती है। बूंदों के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ उनकी संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था में मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। आरंभ में अवरोही वायु तरंगे आरोही तरंगों को केवल एक ओर पाई जाती हैं। इस लाइन को दोबारा सुन ले। आरंभ में अवरोही वायु तरंगे आरोही तरंगे के केवल एक ओर पाई जाती हैं, किंतु धीरे धीरे इन तरंगों का संपूर्ण कोष में विस्तार हो जाता है। धरातल पर हवा के तेज झोंके चलने लगते हैं। इनके कारण तापमान में शीघ्र कमी हो जाती है तथा मूसलाधार वृष्टि होने लगती है। अंततः अवरोही वायु तरंगों की शक्ति कम होने लगती है तथा क्रमशः उनका पूर्ण रूप से लोप हो जाता है। इसी के साथ ही तड़ित झंझा की विघटन अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ज्ञातव्य है कि प्रौढ़ावस्था में ही तड़ित झंझा अत्यधिक प्रचंड होती है। धरातल पर फैलने वाली अत्यधिक शीतल वायु के झोंकों से समीपवर्ती तड़ित झंझा के आगमन की सूचना मिलती है। विघटन की अवस्था, डिसिपेटिंग स्टेज। इस अवस्था में तड़ित झंझा के सभी कोषों में अवरोही एवं मंद गति वाली वायु तरंगों की प्रधानता होती है। मेघों में जल की आपूर्ति कम होने लगती है, जिसके फलस्वरूप वृष्टि की तीव्रता भी कम हो जाती है। केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली शीतल हवाएं धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। अंत में आकाश में मेघों के टुकड़े तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। विघटन अवस्था में कभी कभी कोष का जीवन काल थोड़े ही समय में समाप्त हो जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में कुछ एक तूफानों से घंटों तक हल्की वर्षा होती रहती है। तड़ित झंझा निर्माण कारी प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए वे सभी प्रक्रियाएं सहायक होती हैं जिनसे वायु के तापमान का ह्रास दर प्रपाती होता है। इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर तड़ित झंझा का वर्गीकरण भी किया जाता है। तापमान ह्रास दर को निम्नलिखित दशाएं प्रपाती बनाती हैं। पहला, सूर्याभिताप से धरातल का तीव्र उष्मन। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल का विकिरण द्वारा शीतलन। तीसरा, धरातल के निकट अभिवहनिक उष्मन। चौथा, उच्च स्तरीय उष्मा स्रोत। पांचवा, अभिसरण। छठा, निम्न तलों पर उष्ण वायु का अभिवहन। सातवां, ऊंचाई पर शीतल वायु का अभिवहन। आठवां, वायु का पर्वतीय अवरोध द्वारा उत्थान। नवा, वातागृह उत्थान। यदि वायु में आर्द्रता की पर्याप्त मात्रा हो तो उपयुक्त प्रक्रियाओं में से कोई एक या दो प्रक्रियाएं ताप ह्रास दर को प्रपाती बना देती हैं। इसके विपरीत वायुमंडल में आर्द्रता कम होने पर अथवा अस्थायित्व पाए जाने पर उपयुक्त दशाओं के बावजूद तड़ित झंझा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तड़ित झंझा का वर्गीकरण, थंडर स्टॉर्म क्लासिफिकेशन। ताप ह्रास दर को प्रपाती बनाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर तड़ित झंझा को निम्नांकित 6 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला, स्थानीय अथवा तपन तड़ित झंझा, लोकल आर हीट थंडर स्टॉर्म। तपन तड़ित झंझा की उत्पत्ति स्थानीय रूप से धरातल के अत्यधिक उष्मन से होती है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति उष्णाद्र वायु में संवहन धाराओं के उत्पन्न होने से संवहन धाराओं के उत्पन्न होने के कारण होती है। इसीलिए ऐसे तूफान अधिकतर गर्म प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में दिन के तीसरे पहर उत्पन्न होते हैं। इनके विकास की अनुकूलतम परिस्थितियां भूमध्य रेखा के निकट डोलड्रम में पाई जाती हैं। वायुमंडल की में प्रतिबंधी अस्थायित्व कंडीशनल इनस्टेबिलिटी इनकी उत्पत्ति की अनिवार्य शर्त है। 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बाहर तड़ित झंझा बहुत कम देखे जाते हैं। इन तूफानों के लिए आवश्यक ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला, धरातल के समीप उत्पन्न प्रबल संवहन तरंगे। दूसरा, संघनन से प्राप्त होने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा। दूसरा, पर्वतीय तड़ित झंझा, ओरोग्राफिक थंडर स्टॉर्म। जब पर्वतीय अवरोध से आर्द्र वायु ऊपर उठती है तब तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी आरोही वायु में प्रतिबंधी अथवा संवहनिक अस्थायित्व तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। इसीलिए मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वती अथवा पठारी भागों में ऐसे तूफान अधिक आते हैं। इनकी प्रचंडता एवं इनके आकार अस्थानीय तड़ित झंझा की अपेक्षा बड़े होते हैं। इनके द्वारा कम समय में अधिक वर्षा होती है। तीसरा, अभिवहनी तड़ित झंझा, एडवेक्टिव थंडर स्टॉर्म। इस प्रकार के तड़ित झंझाओं की उत्पत्ति धरातल के निकट उष्ण वायु के अभिवहन से होती है। यदि धरातल के निकट गर्म वायु की परत पाई जाती है तथा बहुत ऊंचाई पर वायु की परत के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऐसी स्थिति में ताप ह्रास दर अत्यधिक प्रपाती होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल मैदान के ऊपर वायुमंडल में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाइयों के बीच रात्रिकालीन तड़ित झंझा की उत्पत्ति साधारण घटना है। इसका मुख्य कारण उपयुक्त ऊंचाइयों पर उष्ण वायु का अभिवहन है। इसके विपरीत जब ऊपरी वायुमंडल में शीतल वायु का अभिवहन होता है तब भी ताप ह्रास दर प्रपाती हो जाती है। शीत सीमाग्रों कोल्ड फ्रंट्स के अग्रभागों में विक्षोभ मंडल के मध्य एवं ऊपरी भागों में अभिवहन के द्वारा वायु शीतल हो जाती है। यदि इसी के साथ सूर्य तप के से धरातल गर्म हो जाता है तो वायु की निचली परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रकार बड़ी ही भीषण एवं प्रचंड तड़ित झंझाओं की उत्पत्ति होती है। चौथा, शीत वातागरी तड़ित झंझा कोल्ड फ्रंट थंडर स्टॉर्म। ऐसी तड़ित झंझाओं की उत्पत्ति शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों के शीत वाताग्रों पर होती है। शीत वाताग्रों पर ऊपर उठाई गई उष्ण वायु में यदि अस्थायित्व होता है तो तड़ित झंझा एवं कपासी वर्षी मेघों का सृजन होता है। ऐसे तूफान धरातल के निकट अत्यधिक प्रचंड होते हैं। ये दिन अथवा रात किसी भी समय उत्पन्न हो सकते हैं। इनके विकास के लिए ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसका कारण विस्थापित उष्ण वायु राशि में प्रतिबंधी अस्थायित्व का होना है। पांचवा, पूर्व वाताग्री तड़ित झंझा फ्री फ्रंटल थंडर स्टॉर्म। शीत वाताग्रों के सैकड़ों किलोमीटर आगे वाताग्र के समानांतर लंबी तथा सक्रिय पेटियों में अनेक छोटे तथा प्रचंड तूफानों का जन्म होता है। तूफानों की इन पंक्तियों को स्क्वायर लाइन कहा जाता है। इन तूफानों के आगमन से पवन की दिशा में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है तथा तेज झोंकेदार आधियां चलने लगती हैं। इनके तापमान में गिरावट, वायुदाब में वृद्धि तथा उपल वृष्टि भी होती है। छठा, उष्ण वाताग्री तड़ित झंझा वार्म फ्रंट थंडर स्टॉर्म। उष्ण वाताग्र पर उष्णाद्र वायु का आरोहण होता है। यदि आरोही वायु में आर्द्रता अधिक होती है तथा उसमें अस्थायित्व भी पाया जाता है तो तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है। इनकी प्रचंडता अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे तूफान धरातल से अधिक ऊंचाई पर उत्पन्न होते हैं, अतः धरातल पर इनका कम प्रभाव पड़ता है। इन तूफानों की संख्या बहुत कम होती है। भौगोलिक वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर तड़ित झंझा की उत्पत्ति बहुत कम होती है। विषुवत रेखा के निकटवर्ती उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ की उष्णाद्र वायु के अतिरिक्त डोलड्रम्स की पेटी में पवनों का अभिसरण होता है जिससे वायु को ऊपर उठने में सहायता मिलती है। सूर्यातप के कारण धरातल के गर्म हो जाने पर आर्द्र वायुमंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं जो तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए भूमध्य रेखी क्षेत्रों में इन तूफानों की बारंबारता सर्वाधिक होती है। उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी में वायु का अवतलन होने से तड़ित झंझा की उत्पत्ति असंभव होती है। उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी तटवर्ती प्रदेशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को, चिली तथा कैलिफोर्निया आदि में भी इन तूफानों की संख्या कम होती है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे प्रचलित पवनों का भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होना, ठंडी समुद्री धाराओं से वायु का शीतल हो जाना तथा यहाँ की वायु राशियों में स्थायित्व पाए जाना, उष्ण मरुस्थलों में तड़ित झंझा की उत्पत्ति वर्ष भर में औसतन मात्र 5 दिन होती है। भूमध्य रेखी प्रदेशों में तड़ित झंझा की संख्या की दृष्टि से निम्नांकित क्षेत्र विशेष उल्लेखनीय है। मध्यवर्ती अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका में एडीज के पूर्व स्थित क्षेत्र, मेडागास्कर तथा पूर्वी द्वीप समूह। पीटरसन ने मध्यवर्ती अफ्रीका को तड़ित झंझा की दृष्टि से विश्व का केंद्र माना है। ब्रुक्स के अनुसार विश्व के विभिन्न प्रदेशों में उत्पन्न होने वाले तड़ित झंझाओं की संख्या निम्नलिखित है। जावा में 225 दिन प्रतिवर्ष, मध्य अफ्रीका में 150 दिन, पनामा में 136 दिन, दक्षिणी मेक्सिको में 142 दिन, मध्यवर्ती ब्राजील में 106 दिन, संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा प्रायद्वीप तथा मेक्सिको के खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में 70 से 80 दिन, मध्यवर्ती यूरोप तथा एशिया में 20 दिन। भारत में तड़ित झंझा वाले दिनों की संख्या लगभग 25 है। अयनवर्ती देशों में स्थल भाग के ऊपर आने वाले ऐसे तूफान वर्षा ऋतु में दिन के तीसरे पहर तथा संध्या काल में उत्पन्न होते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में तड़ित झंझा की उत्पत्ति सामान्य बात है। समुद्रों के ऊपर इनकी उत्पत्ति दिन की अपेक्षा रात में अधिक होती है। मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रारंभ तथा अंत में तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में जहां आर्द्र वायु प्रवेश कर जाती है, ग्रीष्मकाल में इनकी उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति का समय दिन का उत्तरार्ध अथवा सांध्यकाल होता है। मध्य अक्षांशों के में समुद्र की अपेक्षा स्थल पर ऐसे तूफान अधिक आते हैं। टॉर्नेडो टॉर्नेडो एक भयंकर किंतु अल्प अवधि का तूफान होता है। यह तूफान आकार में अत्यंत छोटा किंतु अत्यधिक प्रचंड होता है। इसमें धरातल के निकट पवन का वेग तूफान से प्रभावित छोटे क्षेत्र में लगभग 320 किमी प्रति घंटा अंकित किया जाता है। टॉर्नेडो शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश भाषा के ट्रोनाडा शब्द से हुई है। क्रिचफील्ड ने इस तूफान को एक ऐसा चुस्त भ्रमिल टाइट वर्टेक्स माना है जो एक अत्यधिक निम्न दाब केंद्र के चारों ओर परिभ्रमण करता है। उत्तरी तथा मध्य अफ्रीका में टॉर्नेडो शब्द तड़ित झंझा के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु मौसम विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के अत्यधिक भीषण तूफान के लिए किया जाता है। पीटरसन के अनुसार टॉर्नेडो अल्प क्षैतिज विस्तार एवं अत्यधिक तीव्रता वाले भ्रमिल होते हैं जो तड़ित मेघों से नीचे की ओर फैला रहता है। सामान्यतया यह तूफान एक ऐसे कीप के आकार वाले मेघ के समान दिखाई पड़ता है जिसका चौड़ा भाग कपासी वर्षी मेघों में तथा नीचे का सकरा भाग धरातल तक लटकता रहता है। टॉर्नेडो का निचला भाग धूल अथवा मलबे से घिरा रहता है। इन वस्तुओं को धरातल से चूषित कर लिया जाता है तथा पुनः उन्हें भ्रमिल के केंद्रापसारी बल के द्वारा बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। प्रारंभ में यह कीप लंबवत होता है, किंतु ज्यों ज्यों ऊपर स्थित मेघ आगे बढ़ते जाते हैं, वातावरण का ऊपरी भाग झुक जाता है और कभी कभी मेघों से पृथक हो जाता है। अनेक अवसरों पर कपासी वर्षी मेघ से अनेक किप लटकते हैं, जिनमें कुछ तो धरातल तक पहुंच जाते हैं और कुछ ऊपर ही रह जाते हैं। संरचना स्ट्रक्चर। टॉर्नेडो अत्यधिक वेग से प्रवाहित होने वाले पवनों का आवर्त होता है। इसका व्यास 30 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक होता है, किंतु अधिकांश टॉर्नेडो के व्यास की लंबाई 150 से 600 मीटर तक होती है। इनके आगे बढ़ने की गति 32 से 64 किमी प्रति घंटे होती है। इनके पथ की लंबाई कुछ किलोमीटर से लेकर लगभग 320 किलोमीटर तथा चौड़ाई 800 मीटर से अधिक हो सकती है। ये तूफान कभी एकाकी तथा कभी कभी पृथक पृथक होते हैं। टॉर्नेडो में तीव्र गति से चक्कर काटती हुई हवाओं का वेग वास्तव में कभी नापा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इनके मार्ग में रखा गया वायु वेग मापी नष्ट हो जाता है। इनसे हुई क्षति के आधार पर पवनों पर का अनुमानित वेग 320 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा माना जाता है। टॉर्नेडो के आगमन के साथ वायुदाब में आकस्मिक गिरावट आ जाती है। साधारणतया वायुदाब में 25 मिलीबार की गिरावट अंकित की जाती है। टॉर्नेडो की अपार विध्वंसक शक्ति का कारण इसके किनारे से केंद्र की ओर वायुदाब में अत्यधिक गिरावट है। वायुमंडलीय दाब में इस प्रकार की आकस्मिक गिरावट के फलस्वरूप बड़ी बड़ी इमारतों के भीतर तथा बाहर के दाब में अत्यधिक अंतर उत्पन्न हो जाने से कभी कभी ये इमारतें विस्फोट के साथ गिरकर नष्ट हो जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में टॉर्नेडो में केंद्र के चारों ओर हवाएं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती हैं। ज्ञातव्य है कि इस तूफान में पवन का वेग तथा उसकी प्रचंडता अन्य सभी प्रकार के तूफानों से अधिक होती है। टॉर्नेडो की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टॉर्नेडो। इन तूफानों में तड़ित झंझा के समान वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं। इनमें तेज आंधी, मूसलाधार वृष्टि, ओले, मेघों की गरज तथा बिजली की चमक आदि सभी लक्षण पाए जाते हैं। पवन वेग की अधिकता के कारण इन तूफानों में भीषण आवाज सुनाई पड़ती है। इन प्रबल किंतु लघु आकार वाले विध्वंसकारी तूफानों का संपूर्ण जीवन काल लगभग 8 मिनट का होता है। इन तूफानों की उत्पत्ति उन क्षेत्रों में होती है जहां उष्णकटिबंधीय एवं ध्रुवीय वायु राशियां परस्पर मिलती हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए बसंत ऋतु एवं ग्रीष्मकाल के प्रारंभ के दिन अधिक उपयुक्त होते हैं। टॉर्नेडो की उत्पत्ति अति प्रचंड प्रविकीर्ण तड़ित झंझाओं से भी होती है, किंतु ऐसे तूफान अत्यधिक अल्पकालिक होते हैं। इनके मार्ग भी अनियमित होते हैं। भौगोलिक वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। ध्रुवीय क्षेत्रों तथा शीतकाल में महाद्वीपों के अत्यधिक ठंडे उत्तरी भागों को छोड़कर टॉर्नेडो की उत्पत्ति विश्व में कहीं भी हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक संख्या में ये पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राकी पर्वतमालाओं के पूरब में स्थित प्रदेशों एवं एंडीज पर्वत के पूरब में इनकी उत्पत्ति भारी संख्या में होती है। पूर्वी भारत में भी टॉर्नेडो से प्रभावित होता है। इनकी भौगोलिक स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि इनकी उत्पत्ति में तापमान एवं आर्द्रता के ऊर्ध्वाधर वितरण एवं वायुधाराओं पर पर्वतों के प्रभाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी घाटी टॉर्नेडो की दृष्टि से वायु का सर्वाधिक कुख्यात क्षेत्र है। यहाँ टॉर्नेडो की औसत वार्षिक संख्या 145 है। कांसास, आयोवा, टेक्सास, अर्कनसास, ओक्लाहामा, मिसौरी, अलाबामा, मिसिसिपी तथा नेब्रास्का आदि राज्यों में ये तूफान अधिक उत्पन्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो का संबंध शीत वाताग्रों से होता है। शीत वाताग्र पर ऊपर उठी हुई उष्ण वायु राशि में अत्यधिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इन प्रचंड तूफानों तथा तड़ित झंझाओं की उत्पत्ति होती है। टॉर्नेडो से संबद्ध मौसमी दशाएं। टॉर्नेडो में निम्नलिखित वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं। पहला, धरातल के निकट उष्णाद्र वायु की परत के ऊपर तापमान व्युत्क्रमणता पाई जाती है, जिसके ऊपर शुष्क वायु राशि में ताप ह्रास दर अत्यधिक प्रपाती होती है। दूसरा, वायु स्तंभ काफी ऊंचाई तक उठा होता है। तीसरा, 3000 से 6000 मीटर के बीच में तेज हवाओं की पेटी पाई जाती है, जिसमें पवन का वेग 64 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। चौथा, आर्द्र वायु की परत में आर्द्रता एक निश्चित सक्रिय पेटी में संकेंद्रित होती है। पांचवा, वेगवान पवनों का अक्ष जो नीचे की ओर लटकता रहता है, आर्द्र वायु के स्फान वेज की धुरी को काटता है। छठा, वायुमंडल में मुक्त संवहन तल लेवल ऑफ फ्री कन्वेक्शन काफी नीचे होता है तथा संपूर्ण वायु स्तंभ में संवहनी अस्थिरता विद्यमान रहती है। टॉर्नेडो एक विनाशकारी तूफान। टॉर्नेडो से धन जन की अपार क्षति होती है। इनसे होने वाले विनाश तीन प्रकार के होते हैं। पहला, धरातली पवन के प्रचंड वेग के कारण इमारतें, पेड़ तथा अन्य खुले हुए पदार्थ धराशायी हो जाते हैं। दूसरा, इन तूफानों में वायुदाब में आकस्मिक गिरावट के कारण इमारतों के बाहर तथा भीतर वायुदाब में अत्यधिक अंतर से उनमें विस्फोट हो जाता है। तीसरा, न्यूनतम वायुदाब वाले केंद्र के समीप चक्कर काटती हुई हवाएं इतनी प्रबल होती हैं कि मकानों के छत तक को उड़ा ले जाती हैं। इनकी चपेट में पड़ने वाली हर वस्तु काफी ऊंचाई तक उठा ली जाती है तथा पुनः वे वस्तुएं कुछ दूर धरातल पर गिरा दी जाती हैं। टॉर्नेडो के पथ में पड़ने वाली इमारतें, पेड़, बिजली तथा टेलीफोन के खंभे इत्यादि सभी कुछ धराशायी हो जाते हैं। एक नया अध्याय, जलवायु का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। जलवायु के वर्गीकरण के निम्नलिखित तीन प्रमुख उपागम हैं, जिनका अब तक अनुसरण किया जाता है। ए, अनुभाविक, एम्पिरिकल। बी, जेनेटिक, जेनेटिक तथा सी, व्यवहारिक अथवा क्रियात्मक, अप्लाइड। अनुभाविक वर्गीकरण, इस प्रकार का वर्गीकरण जलवायु के प्रेक्षित विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। इस उपागम के अंतर्गत जलवायु के विविध प्रकारों और उनकी सीमाओं का निर्धारण स्वयं जलवायु के विभिन्न तत्वों के उपलब्ध आंकड़ों अथवा प्राकृतिक वनस्पतियों पर जलवायु के प्रभाव के आधार पर किया जाता है। कोपेन तथा थर्नफेट के वर्गीकरण इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु का सूचक मानकर अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए, किंतु थर्नफेट ने अपने संशोधित वर्गीकरण में जलवायु के प्रेक्षित आंकड़ों को ही अधिक महत्व प्रदान किया है। इस वर्गीकरण में तापमान एवं वर्षण जैसे जलवायु के दो प्रमुख तत्वों को ही प्रधानता दी गई है। अनुभाविक वर्गीकरण में किसी प्रदेश की जलवायु की उत्पत्ति के कारणों जैसे वायु राशि, पवन प्रवाह प्रणाली आदि पर विचार नहीं किया जाता। इस उपागम के अंतर्गत जलवायु के वर्गीकरण के लिए प्रेक्षण एवं अनुभव को ही आधार माना गया है। जेनेटिक वर्गीकरण, जेनेटिक क्लासिफिकेशन। इस प्रकार का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति के कारणों के आधार पर किया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रकार के वर्गीकरण का आधार सैद्धांतिक हो जाता है, जिसमें अपूर्णता का होना स्वाभाविक है। इस प्रकार का वर्गीकरण भूगोलवेत्ताओं, सस्य वैज्ञानिकों तथा अन्य लोगों की आवश्यकता के पूर्ति करने में पूर्ण रूपेण सहायक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिवार्था के मतानुसार जेनेटिक क्लासिफिकेशन पर आधारित जलवायु को जलवायु के किसी एक प्रकार, किसी एक समूह के अंतर्गत एक से अधिक अनुभाविक जलवायु समूह आ जाएंगे। व्यवहारिक अथवा क्रियात्मक वर्गीकरण, अप्लाइड क्लासिफिकेशन। इस वर्गीकरण का आधार जलवायु का अन्य वस्तुओं पर पड़ने वाला प्रभाव है। इसके द्वारा उन विशिष्ट समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है जिनका संबंध जलवायु के केवल एक या दो तत्वों से होता है। मानव के स्वास्थ्य और शारीरिक सुखों पर जलवायु का जो प्रभाव पड़ता है उसे आधार मानकर जलवायु के विभिन्न प्रकारों का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पतियों तथा तापमान एवं आर्द्रता में अनेक संबंध, अंतर संबंध पाए जाते हैं। इस आधार पर जलवायु का क्रियात्मक वर्गीकरण संभव है। वस्तुतः व्यवहारिक जलवायु विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में जलवायु और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों के सहसंबंधों की विवेचना की जाती है। इन सहसंबंधों के प्रादेशिक वितरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र वास्तव में जलवायु के विशिष्ट वर्गीकरण के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कोपेन का वर्गीकरण, कोपेन्स क्लासिफिकेशन। कोपेन का विश्व की जलवायु का वर्गीकरण मात्रात्मक तथा अनुभाविक है। कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम सन 1900 में प्रस्तुत किया गया, जिसका आधार संसार के वनस्पति प्रदेश थे। उन्होंने अपने वर्गीकरण को कई बार संशोधित किया। प्रस्तुत वर्गीकरण का अंतिम स्वरूप सन 1931 में तैयार हुआ। जलवायु के इस वर्गीकरण को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र उनके प्रसिद्ध ग्रंथ ग्रुंडरिस्ट डेर क्लीमेकुंडे में उसी वर्ष प्रकाशित हुआ। कोपेन के मौलिक वर्गीकरण का अंतिम संशोधित प्रारूप सन 1953 में प्रकाशित हुआ, जो कोपेन गीगर पॉल के वर्गीकरण के नाम से अत्यधिक लोकप्रिय है। कोपेन मूलतः जलवायु शास्त्री एवं वनस्पति भूगोलविद थे। अतः उनका मूल उद्देश्य यह था कि जलवायु समूहों की ऐसी सीमाएं निर्धारित की जाएं जो प्रमुख वनस्पति प्रदेशों की सीमाओं से मेल खाती हों। उनका वर्गीकरण अनुभाविक एवं वस्तुनिष्ठ होने के कारण भूगोलवेत्ताओं में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर सका। प्रस्तुत वर्गीकरण में प्रत्येक जलवायु प्रदेश का निर्धारण तापमान एवं वृष्टि के औसत वार्षिक मानों के आधार पर किया गया है। इस प्रणाली में जलवायु के बड़े समूहों, उपसमूहों एवं उनके उप विभागों के तापमान एवं वृष्टि संबंधी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए अक्षर समूहों का प्रयोग किया गया है। जलवायु के मुख्य कारकों, जो संख्या में कुल 5 हैं, के लिए बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया गया, जिनका विवरण निम्नलिखित है। ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस प्रकार की जलवायु में प्रत्येक माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे जलवायु में शीत ऋतु का अभाव होता है, वार्षिक वर्षा की मात्रा अधिक होती है तथा वाष्पीकरण की अपेक्षा वृष्टि सदैव अधिक होती है। प्रेसिपिटेशन ऑलवेज एक्सीड एवेपोरेशन। बी, शुष्क जलवायु। इस जलवायु में वाष्पीकरण वृद्धि से अधिक होता है, एवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन। सी, मध्यतापी जलवायु। इसे उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है। इसमें शीत ऋतु कठोर नहीं होती। इस जलवायु प्रदेश में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के कम तथा सबसे ठंडे माह का औसत 18 से 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य अंकित किया जाता है। यहाँ ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों ऋतुओं में पाई जाती हैं। डी, अल्पतापी जलवायु। इसे आर्द्र अल्पतापी जलवायु भी कहते हैं। इसमें शीत ऋतु कठोर होती है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम तथा सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा वन प्रदेशों की ध्रुवीय सीमा बनाती है। ई, ध्रुवीय जलवायु। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु नहीं होती तथा सबसे गर्म माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इस जलवायु को उपसमूहों में विभक्त करने के लिए कैपिटल टी तथा कैपिटल एफ का प्रयोग किया गया है। कैपिटल टी टुंड्रा तुल्य तथा एफ कैपिटल एफ हिमाच्छादित जलवायु का प्रतीक है। ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त 4 जलवायु समूह अर्थात ए, सी, डी तथा ई का आधार औसत वार्षिक तापमान तथा बी अर्थात शुष्क जलवायु का आधार वृष्टि एवं वाष्पीकरण का अनुपात है। ए, सी तथा डी जलवायु समूहों में वनों के विकास के लिए तापमान एवं आर्द्रता की मात्राएं अनुकूल होती हैं। जलवायु के उपयुक्त 5 समूहों को वृष्टि के मौसम वितरण सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उपसमूहों तथा उपवर्गों में विभक्त किया गया है। इन समूहों के लिए बड़े अक्षर के साथ दूसरे अक्षर का प्रयोग किया जाता है जो निम्नांकित है, कैपिटल एस अर्ध शुष्क स्टेपिज, कैपिटल डब्ल्यू शुष्क डिजर्ट। उपयुक्त दोनों बड़े अक्षरों यस और डब्ल्यू को केवल बी समूह की जलवायु के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे बी एस तथा बी डब्ल्यू। छोटे अक्षरों से जिन दशाओं का बोध होता है वे निम्नांकित होते हैं। स्मॉल एफ आर्द्र जलवायु, वर्ष के प्रत्येक माह में वृष्टि होती है, कोई ऐसा महीना नहीं होता जिसमें वर्षा बिल्कुल न हो। इस छोटे अक्षर का प्रयोग ए, कैपिटल सी तथा कैपिटल डी के साथ होता है। शुष्कतम महीने में अल्पतम वृष्टि की मात्रा 6 सेंटीमीटर होती है। स्मॉल एम मानसूनी जलवायु, इस अक्षर का प्रयोग केवल कैपिटल ए के साथ किया जाता है जिसमें शुष्क ऋतु छोटी होती है। सर्वाधिक शुष्क ऋतु में वृष्टि की मात्रा 6 सेंटीमीटर से कम होती है। स्मॉल डब्ल्यू, इस अक्षर से ज्ञात होता है कि शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती तथा सर्वाधिक शुष्क माह में वर्षा की मात्रा 6 सेंटीमीटर से कम होती है। स्मॉल एस ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। तापमान की अन्य विशेषताओं के आधार पर उपयुक्त जलवायु समूहों के उपविभाग किए गए हैं जिसके लिए अक्षर समूहों में तीसरा अक्षर जोड़ा गया जिसका विवरण निम्नांकित है। स्मॉल ए ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म तथा सबसे गर्म माह का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से। इस संकेताक्षर का प्रयोग सी तथा कैपिटल सी तथा कैपिटल डी के साथ किया जाता है। स्मॉल बी ग्रीष्म ऋतु साधारण होती है और सबसे गर्म महीने का औसत तापमान बाईस डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसका प्रयोग केवल कैपिटल सी तथा कैपिटल डी के साथ होता है। स्मॉल सी ग्रीष्म ऋतु छोटी हो और कम गर्म होती है तथा 4 महीने से कम समय में 10 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान अंकित किया जाता है। स्मॉल डी शीत ऋतु अत्यधिक सर्द होती है तथा सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान -38 डिग्री सेल्सियस होता है। वस्तुतः यह कैपिटल डी समूह की जलवायु का गौण भाग है। स्मॉल एच गर्म एवं शुष्क जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। यह कैपिटल बी समूह की जलवायु का गौण भाग है। स्मॉल के शुष्क तथा सर्द जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। यह भी कैपिटल बी समूह की जलवायु का गौण भाग है। स्मॉल एन इस अक्षर से वर्ष भर कोहरे का संकेत मिलता है। इस प्रकार कोपेन ने संसार की जलवायु को 5 प्रमुख समूहों तथा 11 उपसमूहों में विभाजित किया। इन उपसमूहों को पुनः गौण भागों में विभक्त किया गया जिससे जलवायु के कुल 24 प्रकार प्राप्त हुए जो निम्नलिखित हैं। कैपिटल ए स्मॉल एफ आयनवर्ती वर्षावन, उष्ण सभी ऋतुओं में वर्षा। कैपिटल ए स्मॉल एम आयनवर्ती मानसून, उष्ण ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश वृष्टि। कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू आयनवर्ती सवानत अथवा घास के मैदान, उष्ण शीत ऋतु शुष्क। कैपिटल बी कैपिटल एस एंड एच स्मॉल एच आयनवर्ती स्टेपीज, अर्धशुष्क उष्ण। कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल के शीतोष्ण कटिबंधी स्टेपीज, अर्धशुष्क शीत प्रधान। कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एच उष्ण मरुस्थल, शुष्क एवं गर्म। कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल के, शीतोष्ण मरुस्थल, शुष्क और शीत प्रधान। कैपिटल सी स्मॉल एफ स्मॉल ए, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, शीत ऋतु सामान्य, सभी ऋतुओं में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु लंबी और गर्म। कैपिटल सी स्मॉल एफ स्मॉल बी सागरी, शीत ऋतु सामान्य, सभी ऋतुओं में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म। कैपिटल सी स्मॉल एफ स्मॉल सी सागरी, शीत ऋतु सामान्य, सभी ऋतुओं में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीतल। कैपिटल सी स्मॉल एस स्मॉल ए भूमध्य सागरी आंतरिक क्षेत्र, शीत ऋतु सामान्य, ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म। कैपिटल सी स्मॉल बी स्मॉल एस तटवर्ती भूमध्य सागरी, शीत ऋतु सामान्य, ग्रीष्म ऋतु छोटी, शुष्क साधारण गर्म। कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल ए उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, शीत ऋतु सामान्य एवं शुष्क, ग्रीष्म उष्ण। कैपिटल सी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल बी अयनवर्ती ऊंचे प्रदेश, शीत ऋतु सामान्य एवं शुष्क, ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म। कैपिटल डी स्मॉल एफ स्मॉल ए आर्द्र महाद्वीपीय, शीत ऋतु कठोर, वर्षा साल भर, ग्रीष्म ऋतु लंबी तथा गर्म। कैपिटल डी स्मॉल एफ स्मॉल बी आर्द्र महाद्वीपीय, वर्षा साल भर, शीत ऋतु कठोर, ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म। कैपिटल डी स्मॉल एफ स्मॉल सी उप आर्कटिक, शीत ऋतु अत्यधिक सर्द, वर्षा साल भर, ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीतल। कैपिटल डी स्मॉल एफ स्मॉल डी उप आर्कटिक, शीत ऋतु अपेक्षाकृत अधिक सर्द, वर्षा साल भर, ग्रीष्म ऋतु छोटी एवं शीतल। कैपिटल डी कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल ए आर्द्र महाद्वीपीय, शीत ऋतु कठोर, शुष्क और लंबी, ग्रीष्म ऋतु गर्म। कैपिटल डी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल बी आर्द्र महाद्वीपीय, शीत ऋतु कठोर, शुष्क एवं लंबी, ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीतल। कैपिटल डी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल सी उप आर्कटिक, शीत ऋतु कठोर एवं शुष्क, ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीतल। कैपिटल ई कैपिटल टी टुंड्रा, बहुत छोटी ग्रीष्म ऋतु, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य। ई एफ बोथ आर कैपिटल, ध्रुवीय जलवायु, वर्ष भर हिमच्छादन। कोपेन के वर्गीकरण का आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ कोपेन्स क्लासिफिकेशन। प्रस्तुत वर्गीकरण में तापमान और वृष्टि के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। मौसम के ये तत्व सुगमतापूर्वक नापे जा सकते हैं। मौसम के अन्य तत्वों की अपेक्षा इनकी माप विश्व के अधिकांश भागों और सभी मौसम सूचक केंद्रों पर की जाती है। अतः सांख्यिकी प्रचालों वेरिएबल्स पर आधारित होने के कारण प्रत्येक जलवायु प्रदेश को यथार्थ रूप में सीमांकित किया जा सकता है। तापमान और वृष्टि मौसम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी तत्व हैं। जलवायु के विभिन्न कारकों की परिवर्तनशीलता का सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं तत्वों द्वारा परिलक्षित होता है। संपूर्ण मानवीय क्रियाओं, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, मृदाओं एवं भूदृश्यों पर उपयुक्त दो तत्वों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रस्तुत वर्गीकरण पर्यावरण के उन पक्षों से संबद्ध है तापमान और वृष्टि के औसत वार्षिक एवं मासिक मानों को अपने वर्गीकरण का आधार मानकर कोपेन ने वर्षण प्रभाविता प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस का भी उसमें समावेश कर दिया है। ज्ञातव्य है कि प्राकृतिक वनस्पति का वर्षण की प्रभाविता से घनिष्ठ संबंध होता है। वृष्टि की प्रभाविता संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पोटेंशियल इवोपोर्ट ट्रांसपिरेशन की दर पर निर्भर होती है, जबकि इस दर को तापमान नियंत्रित करता है। कोपेन द्वारा प्रदर्शित जलवायु प्रदेशों की सीमाएं प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों की सीमाओं से मेल खाती हैं। उदाहरणार्थ वर्ष के सर्वाधिक गर्म महीने की 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा टुंड्रा प्रदेश की सीमा का प्रारंभ करने के साथ ही वृक्षों के विकास के ध्रुवी सीमा भी है। इस वर्गीकरण का संबंध प्राकृतिक वनस्पतियों से होने के कारण इसकी उपयोगिता में भौगोलिक दृष्टि से वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त किसी प्रदेश के औसत वार्षिक एवं मासिक तापमान एवं वृष्टि का ज्ञान होने पर हमें उसकी जलवायु के वर्ग का शीघ्र बोध हो जाता है। जलवायु का प्रस्तुत वर्गीकरण अनुभाविक एवं मात्रात्मक एम्पिरिकल क्वांटिटेटिव है। वर्णात्मक तथा साधारणीकृत होने के साथ ही यह वर्गीकरण न तो विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक है और न ही किसी प्रयोजन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वर्गीकरण अपनी सरलता के कारण ही अत्यंत लोकप्रिय है। अध्ययन और अध्यापन की सुविधा इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी विशेषता है। दोष डिमेरिट्स। इस वर्गीकरण के प्रस्तुतकर्ता वैज्ञानिक ने यद्यपि अपने जीवन काल में इसमें अनेक बार संशोधन किया, तथापि इसकी शुद्धता से वह स्वयं संतुष्ट नहीं हो सका। विभिन्न जलवायु प्रदेशों का विभाजन करने में कोपेन ने औसत मासिक वृष्टि तथा तापमान का प्रयोग किया, किंतु इन औसत आंकड़ों से वृष्टि की प्रभाविता का अनुमान मात्र ही किया जा सकता है, उसका पूर्ण शुद्धता के साथ मापन नहीं किया जा सकता। अतः विभिन्न जलवायु प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन दुष्कर हो जाता है। अपने वर्गीकरण को सरल बनाने के प्रयास में कोपेन ने मौसम के अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा कर डाली। इसके अतिरिक्त इस वर्गीकरण में मौसम के विभिन्न घटकों, वायुमंडलीय परिसंचरण के सिद्धांतों तथा चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात जैसे महत्वपूर्ण तूफानों की भी उपेक्षा की गई है। प्रस्तुत वर्गीकरण का एक अन्य दोष यह है कि यह अनुभाविक होने के कारण जलवायु के निरीक्षण किए गए आंकड़ों पर आधारित है। इसमें जलवायु की उत्पत्ति के कारणों पर तनिक भी विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार इस वर्गीकरण में वायु राशि संकल्पना को, जो आधुनिक जलवायु विज्ञान की आधारशिला है, कोई स्थान नहीं मिल पाया। त्रिवार्था द्वारा प्रस्तुत जलवायु का वर्गीकरण, त्रिवार्था क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। त्रिवार्था का वर्गीकरण कोपेन के अनुभाविक मात्रात्मक वर्गीकरण का संशोधित रूप है। त्रिवार्था ने भी जलवायु के दो मूल तत्वों अर्थात तापमान एवं वृष्टि को जलवायु के वर्गीकरण का आधार बनाया है, किंतु कोपेन प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण के लिए प्रयुक्त संख्यात्मक मानों के प्रस्तुत वर्गीकरण में छोड़ दिया गया है। इस वर्गीकरण में जलवायु को कुल 6 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से 5 तापमान तथा 1 वर्षण पर आधारित है। तापमान पर आधारित जलवायु समूह, क्लाइमेटिक ग्रुप्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस प्रकार की जलवायु विषुवत रेखा के आर पार 20 डिग्री से 40 डिग्री चौड़ी अनियमित पेटी में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु में शीत ऋतु नहीं होती। इसमें तापमान सदैव ऊंचा रहता है तथा वर्ष भर वर्षा होती है। यह जलवायु प्रदेश पाला रहित होता है। समुद्री क्षेत्रों में सबसे ठंडे माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक होता है। इस जलवायु के अंतर्गत 2 उपसमूह पाए जाते हैं जो निम्नांकित है, कैपिटल ए स्मॉल एफ अथवा कैपिटल ए स्मॉल आर। उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु, इस जलवायु में 10 से 12 माह तक वर्षा होती है। इसका संबंध अंतर उष्ण अभिसरण कटिबंध से होता है, जहां दोनों गोलार्धों से आने वाली पवन धाराएं परस्पर मिलकर ऊपर उठती हैं। इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश भी कहा जाता है। कैपिटल ए स्मॉल डब्लू, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। जब सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम दूरी पर होता है, तब ऐसे 2 महीनों में मौसम शुष्क होता है। शीत ऋतु में इन प्रदेशों पर शुष्क सन्मार्गी पवनों तथा उपोष्ण कटिबंधी प्रतिचक्रवातों का प्रभाव रहता है, किंतु ग्रीष्मकाल में यहाँ भूमध्य रेखीय पछुआ पवनों तथा अंतर उष्ण अभिसरण का नियंत्रण होता है। इसे सवाना प्रकार की जलवायु भी कहते हैं। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। कैपिटल सी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसे मध्यतापी जलवायु मेजोथर्मल क्लाइमेटिक रीजन कहा जाता है। सबसे ठंडे महीने की 18 सेल्सियस की समताप रेखा इस प्रदेश की भूमध्य रेखीय सीमा बनाती है। महाद्वीपीय क्षेत्रों में शीतकाल में कभी कभी पाला पड़ता है। समुद्री क्षेत्र पाला रहित होते हैं। यहाँ 8 महीने तक औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। इस समूह को निम्नांकित 2 मुख्य वर्गों में विभक्त किया गया है, कैपिटल सी स्मॉल एफ ब्रैकेट में स्मॉल डब्लू। उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, महाद्वीपों के पूर्वी किनारे ऐसी जलवायु पाई जाती है। यहाँ साल भर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक वृष्टि होती है। शीत ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से वृष्टि होती है। कैपिटल सी स्मॉल एस उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु, महाद्वीपों के उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी किनारे स्थित इन प्रदेशों में शीतकाल में चक्रवाती वृष्टि होती है। ग्रीष्म ऋतु में
प्रति चक्रवातों का नियंत्रण होने से वृष्टि नहीं होती। डी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसे निम्न तापी माइक्रोथर्मल जलवायु प्रदेश कहते हैं। आर्द्र जलवायु वाले ये प्रदेश मध्य अक्षांशों में उपोष्ण कटिबंधीय तथा बोरियल जलवायु के समूह के मध्य स्थित है। इस प्रदेश की ध्रुवी तथा मध्य रेखी सीमाएं क्रमशः 4 महीने और 8 महीने 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा से निर्धारित होती है। इस जलवायु समूह को निम्नांकित 2 उपवर्गों में विभक्त किया गया है। कैपिटल डी एंड जीरो शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, शीत ऋतु साधारण शीतल होती है। महाद्वीपों के मध्य अक्षांशी वायु अभिमुख पश्चिमी किनारे स्थित इस जलवायु प्रदेश में पछुआ पवनों से भी सभी ऋतुओं में वर्षा होती है। सभी महीनों का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक अंकित किया जाता है। कैपिटल डी स्मॉल सी शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, इस जलवायु में शीत ऋतु अपेक्षाकृत कठोर होती है। वृष्टि प्रत्येक ऋतु में होती है। ग्रीष्मकालीन वृष्टि की मात्रा शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। शीतकाल में धरातल पर हिम की चादर पड़ी रहती है। सर्वाधिक सर्द महीने की 0 सेल्सियस का की समताप रेखा D0 तथा स्मॉल कैपिटल डी स्मॉल सी जलवायु की सीमा बनाती है। इन प्रदेश की स्थिति महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे से दूर भीतर की ओर होती है, अथवा ऐसे प्रदेश महाद्वीपों के वायु विमुख किनारों पर पाए जाते हैं। कैपिटल ई बोरियल जलवायु, इन उच्च अक्षांशों में स्थित इस जलवायु समूह में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीतल तथा शीत ऋतु लंबी और अत्यधिक सर्द होती है। 1 से 3 महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक रहता है। शेष महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के कम होता है। कोणधारी वन यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति हैं। जलवायु अत्यधिक कठोर होने के कारण यह जलवायु मानव अधिवास के लिए अनुपयुक्त है। सभी ऋतुओं में थोड़ी वृष्टि होती है। एफ ध्रुवीय जलवायु, वर्ष के किसी माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु नहीं होती। तापमान के आधार पर इस जलवायु समूह को 2 उपवर्गों में विभक्त किया जाता है। कैपिटल एफ स्मॉल टी टुंड्रा तुल्य प्रदेश, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। वर्ष भर स्वअल्प मात्रा में हिम वृष्टि होती है। सबसे गर्म महीने की 10 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं इस जलवायु की क्रमशः भूमध्य रेखी तथा ध्रुवीय सीमाएं निर्धारित करती हैं। कैपिटल एफ स्मॉल आई ध्रुवीय हिमाच्छादित जलवायु, आइस कैप क्लाइमेट्स, वर्ष के प्रत्येक माह का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम अंकित किया जाता है। इस प्रकार की जलवायु एंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड के हिमाच्छादित भागों तथा ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती जमे हुए महासागर के ऊपर पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर ध्रुवीय हवाएं चला करती हैं। वर्ष के किसी भाग में थोड़ी मात्रा में हिमवृष्टि भी हो जाया करती है। वृष्टि के आधार पर जलवायु समूह, क्लाइमेटिक ग्रुप बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन। बी, शुष्क जलवायु। वर्षण का अभाव इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। इस जलवायु में वर्षण की अपेक्षा वाष्पन अधिक होता है। तापमान के आधार पर शुष्क जलवायु को उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण अथवा बोरियल आदि किसी भी ताप कटिबंध में रखा जा सकता है। इस जलवायु को वृष्टि की मात्रा के आधार पर दो मुख्य उपवर्गों में विभाजित किया गया है, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू मरुस्थली जलवायु, कैपिटल बी कैपिटल एस अर्ध मरुस्थली अथवा स्टेपी जलवायु। पुनः तापमान के आधार पर मरुस्थली और स्टेपी जलवायु समूहों को निम्नांकित उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एच उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल। दूसरा, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल के शीतोष्णकटिबंधीय शीत मरुस्थल। तीसरा, कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एच उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। चौथा, कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल एस स्मॉल के शीतोष्ण कटिबंधी स्टेपी जलवायु। गर्म और शीतल मरुस्थलों तथा अर्ध मरुस्थलों के बीच 10 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा सीमा बनाती है। कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल के जलवायु वर्ष भर शुष्क होती है, जबकि कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एच प्रकार की जलवायु में थोड़े समय के लिए वर्षा होती है। शीत मरु प्रदेश मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में स्थित होते हैं। त्रिवार्था द्वारा प्रस्तुत जलवायु का उपयुक्त वर्गीकरण उनके प्रसिद्ध ग्रंथ एन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट के चतुर्थ संस्करण में प्रकाशित हुआ। प्रस्तुत वर्गीकरण उनके पिछले वर्गीकरण का ही संशोधित रूप है, जो कोपेन के वर्गीकरण से बहुत अधिक भिन्न है। भूतल पर क्षैतिज रूप में पाए जाने वाले जलवायु समूहों के अतिरिक्त पर्वतों और पठारों के ऊपर उनकी ऊंचाइयों के अनुसार जलवायु में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न अक्षांशों में स्थित पर्वतीय जलवायु के लिए संकेताक्षर के रूप में त्रिवार्था ने कैपिटल एच का प्रयोग किया है। पर्वतीय जलवायु की प्रमुख विशेषता उच्च दैनिक तापांतर होता है।